ग्रंथदास श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 5 अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना और श्लोक संख्या है 26। मेरे जैसे बोलिए शब्दार्थ बोलिए श्री ब्रह्मा उवाच। ब्रह्मा जी ने कहा अवित्रियम अधिकारी भगवान को सत्यम परम सत्य को अनंतम अनंत को आद्यम समस्त कारणों के आदि कारण को गुहाशयम प्रत्येक हृदय में उपस्थित को निष्कलम शक्ति का ह्रास हुए बिना अप्रतर्क्यम अचिंत को जो भौतिक तर्कों की सीमा से परे हैं मनः अग्रयानम मन से भी अधिक वेगवान वचसा शब्द जाल से। सब लोग बोलने में क्या बात है, दिखाई पड़ रहे हैं बहुत लोग हैं, आवाज नहीं निकल रही है। आवाज से कोई कहेगा केवल दो तीन लोग हैं, यहाँ कोई है नहीं, पूरा मंदिर खाली। और कोई व्यक्ति जो है आवाज से अंदाजा लगाए कितने लोग हैं तो सोचेगा दो तीन लोग हैं केवल, पूरा मंदिर खाली पड़ा है, आवाज नहीं अभी किसी की दिखाई दे रहे हैं, है ना। देखने में तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, सुनाई सुनने में जो है नहीं देख नहीं आ रहे हैं। वचसा शब्द जाल से अनिरुक्तम अवर्णनीय नमामहे। हम सभी आपको नमस्कार करते हैं देवगणम उन परमेश्वर को जिनकी ना तो कोई ना उनसे बढ़कर है, वरेण्यम परम पूज्य जिनकी पूजा गायत्री मंत्र द्वारा की जाती है। अंतिम शब्द है वरेण्यम, जिसमें प्रभुपाद शब्दार्थ में क्या लिखते हैं, जिनकी पूजा गायत्री मंत्र द्वारा की जाती है। तो कितने भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा मिली, हाथ उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जिनको गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली है, और वैसे भी गायत्री मंत्र बहुत प्रचलित है ना, ओम तत्सवितुर वरेण्यम, है ना। तो चूंकि गायत्री मंत्र में वरेण्यम शब्द आता है, तो यहां जो है वरेण्यम शब्द जो आया है इस श्लोक में। तो ये श्लोक जो है जो श्रीमद् भागवत के जो है श्लोक कहलाते हैं और गायत्री मंत्र कहलाता है। तो वेदों के जो श्लोक हैं वो मंत्र कहलाते हैं, वैदिक मंत्र कहलाते हैं, है ना। तो मंत्र में अधिकार नहीं सबका, अभी आजकल गायत्री मंत्र में सबको अधिकार जो दिया जाता है तो वो वेद विरुद्ध है। तो वैदिक मंत्र में सबका अधिकार नहीं है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं, भगवद गीता के श्लोक हैं, उनमें सबका अधिकार है, तो ये समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जो है बता रहे हैं इस श्लोक में है, जो वैदिक मंत्र के जो शब्द हैं वो इसमें आए हैं, है ना। तो वरेण्यम शब्द जो है प्रभुपाद शब्दार्थ में ही मतलब ये दे रहे हैं, परम पूज्य जिनकी पूजा गायत्री मंत्र द्वारा की जाती है, ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये श्लोक अगर पाठ करते हैं तो गायत्री मंत्र से कम नहीं है। श्रीमद् भागवत जो है गायत्री मंत्र ही है, श्रीमद् भागवत में गायत्री मंत्र में कोई अंतर नहीं, लेकिन इसमें अधिकार है। ये श्रीमद् भागवत श्लोक आप जो है बोल सकते हैं और खूब जोर जोर से बोल सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं है ऐसा, कि आप सबको जो है दें, सबको अधिकार नहीं है गायत्री मंत्र में, वैदिक मंत्र में सबका अधिकार नहीं है। तो इस बात को समझना, जो नहीं समझते हैं तो वो जो है मतलब करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र में सबका अधिकार है, हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का महामंत्र है ना। तो गायत्री महामंत्र नहीं कलयुग का, कलयुग में जो है या किसी भी युग में जो वैदिक मंत्र है उनमें सबका अधिकार नहीं होता। तो यहां पर जो है शब्दार्थ पूरा हुआ, अब अनुवाद हम जो है ये आप मेरे पीछे दोहराइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अधिकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं, सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं, निस्संदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। अब देखिए जो अनुवाद है तो उसमें इस तरह से अनुवाद किया गया है जो कि समझ में आए, लेकिन इस श्लोक में जो शब्द हैं वो इस तरह से हैं कि नमामहे शब्द, नमामहे शब्द एक है जो कि हर शब्द के साथ आता है। नमामहे का अर्थ है हम नमस्कार करते हैं। नमामहे जो है ये बहुवचन में है, नमामी शब्द होता है एक वचन में कि मैं नमस्कार करता हूं, नमामी उसमें हम नमामी मैं नमस्कार करता हूं, हो सकता अहम शब्द ना हो, नमामी अपने आप में ही पूर्ण है कि मैं नमस्कार करता हूं। नमामी एक ऐसा शब्द का रूप है कि नमामी अगर कह देते हैं नमामी तो मैं नमस्कार करता हूं, अपने आप मैं अपने आप आ जाता है नमामी। लेकिन नमामहे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो नमामहे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वे सब देवताओं के साथ हैं। तो सब देवताओं के साथ में तो वो जब प्रार्थना करें तो सबकी ओर से प्रार्थना कर रहे हैं सब, क्योंकि वास्तव में देवताओं का ही कष्ट था। कष्ट ब्रह्मा जी का नहीं है, कष्ट किनका है? देवताओं का है। तो देवताओं की ओर से भगवान नमस्कार करते हैं। तो नमामहे शब्द आया है और बाकी जितने भी शब्द आए हैं ये 11 शब्द हैं, है ना। तो इस प्रत्येक शब्द जो है मतलब कैसा है, नमामहे के साथ में है। नमामहे हम नमस्कार करते हैं, अभिक्रियम एक भगवान का ये नाम है किसी विशेष गुण पर आधारित, अभिक्रियम, अभिक्रियम नमामहे। तो यहां पर हो गया अभिक्रियम नमामहे, अभिक्रिय को नमस्कार करते हैं। फिर सत्यम दूसरा शब्द है, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड में सत्यम दूसरा शब्द है, सत्यम नमामहे, है ना। तो कितने मंत्र हो गए? 11 मंत्र हो गए। नमामहे शब्द जो है आप प्रत्येक में आप अगर जोड़े हैं तो अभिक्रियम नमामहे, सत्यम नमामहे, अनंतम नमामहे, आद्यम नमामहे, गुहाशयम नमामहे, निष्कलम नमामहे, अप्रतर्क्यम नमामहे, मनोग्रयाणम नमामहे, वचसा निरुक्तम नमामहे, देवदरम नमामहे, वरेण्यम नमामहे। तो 11 मंत्र हो गए इसमें, एक ही श्लोक में 11 मंत्र हो गए। ये नमस्कार के मंत्र हैं कि नमस्कार कर रहे हैं हम भगवान के, माम नमस्कुरु नंदनाभ मध्यक्तम मुनियाजी माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु। तो यहां पर वो गीता की आज्ञा के अनुसार इस श्लोक में ब्रह्म जी क्या कर रहे हैं, नमामहे, हम सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, है ना। तो गीता की शिक्षा के अनुसार ये श्लोक है, भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये जो है और अब एक एक शब्द को हम सुनेंगे, कैसे समझेंगे कि शब्दार्थ में क्या दिया है और अनुवाद में क्या दिया है, ठीक है। तो आप देखते रहिए, इस श्लोक को देखिए, पहला अभिक्रियन है, ठीक है। तो इसमें शब्दार्थ में क्या दिया गया है, अधिकारी भगवान को। तो प्रत्येक शब्द में को भी मतलब शामिल है कि नमस्कार करते हैं किसको, अधिकारी भगवान को, अधिकारी अभिक्रियन अधिकारी भगवान को, है ना। और इसमें अनुवाद में हे करके अनुवाद दिया गया कि हे परमेश्वर, हे अधिकारी, हे असीम परम सत्य, आपको नमस्कार है। तो हिंदी में इस तरह से भी नमस्कार किया जाता है, हे अधिकारी आपको नमस्कार है, अधिकारी को नमस्कार है, ऐसे भी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है हे अधिकारी आपको नमस्कार है। लेकिन संस्कृत में ऐसा ही होता है, संस्कृत में जो शब्द हैं वो बहुत थोड़े होते हैं और थोड़े शब्दों में पूरी बात बोली जाती है। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है कि थोड़े शब्दों में पूरी बात बोली जाती है। अभिक्रियम नमामहे, अभिकारी भगवान को नमस्कार है, अनुवाद में भी ऐसी है। फिर दूसरा शब्द क्या है, सत्यम, सत्यम नमामहे। तो सत्यम इसमें लिखा परम सत्य, परम सत्य, भगवान सत्य हैं, लेकिन कैसे सत्य हैं, एक तो सापेक्ष सत्य होता है, दूसरा परम सत्य, तो भगवान परम सत्य हैं, है ना, परम सत्य, परम सत्य को नमस्कार। तो इसमें भी लिखा असीम परम सत्य, अनुवाद में लिखा है असीम परम सत्य। फिर तीसरा शब्द क्या है, सब लोग देख रहे हैं, तीसरा शब्द क्या, अनंतम, अनंतम, तो अनंत, अनंत को, और इसमें लिखा है असीम परम सत्य, आप अधिकारी असीम, हाँ। तो ये असीम परम सत्य ये इकट्ठा कर दिया है, ये अनंतम जो है जो श्लोक में है अनुवाद में असीम परम सत्य इकट्ठा कर दिया, सत्यम अनंतम है, असीम परम सत्य। इसके बाद क्या है, आद्यम है, अनुवाद में लिखा है समस्त कारणों के आदि कारण, समस्त कारणों के आदि कारण। तो कारण बहुत से होते हैं, लेकिन आदि कारण एक है, आदि कारण एक है, आद्यम एक वचन है, आदि कारण एक है। तो बहुत से कारण होते हैं किसी भी घटना के, लेकिन उन सबको जो आदि कारण है वो एक ही है, समस्त कारणों के आदि कारण। और इसमें लिखा है आप हर वस्तु के उद्गम है, आद्यम हर वस्तु के उद्गम है, आद्यम कितने हो गए, चार हो गए, पांचवा क्या है, गुहाशयम। तो गुहाशयम का अनुवाद है हिंदी शब्दार्थ में लिखा है प्रत्येक हृदय में उपस्थित, गुहा, गुहा समझते हैं हम लोग, गुफा बोलते हैं ना हिंदी में, गुफा, तो पर्वत में गुफाएं होती हैं, गुफा में क्या होता है, अंधकार होता है, कोई व्यक्ति गुफा में चला जाए तो फिर छिप जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से हृदय में वो भगवान है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे, छिपे हैं, और इस तरह से छिपे हैं उन्होंने, इस तरह से अंधकार पैदा किया हुआ है कि चाहे जितनी सर्जरी कर लो वो नहीं दिखाई पड़ेंगे। डॉक्टर लोग जो है आजकल के मेडिकल में जो है कितना खोजते हैं, लेकिन वो इस तरह से छिपे हुए हैं चाहे जितना चीर फाड़ कर लो वो नहीं दिखाई पड़ेंगे, गुहा से हैं। तो गुहा, गुहा का मतलब गोई है, गोई है का मतलब है जो छिपाने योग्य हो, जैसे भगवान गीता में कहते हैं इति गोई है तमम शास्त्रम, गोई है तम, गोई हम, गोई है तरम, गोई है तमम, जो गोई है का मतलब छिपाने योग्य होता है, और गुहा का मतलब छिपने का स्थान। तो गुहा से हम यानी आप छिपने के स्थान में आशय, गुह आशयम, है ना। तो आप जो है उपस्थित हैं गुहा शयम, है ना, शयन करते हैं, तो उसमें जो है हृदय में आप शयन करते हैं, आप छिपे हुए हैं। तो इसमें लिखा है शब्दार्थ प्रत्येक हृदय में उपस्थित, और अनुवाद में लिखा है सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं, ना? तो परमाणु, परमाणु ये भी है, परमाणु में भी रहते हैं और हृदय में भी रहते हैं, गुहा से हम। इसके बाद क्या है, कितनी संख्या है ये, है, छठा छठा है निष्कलम, निष्कलम। तो शब्दार्थ में लिखा है शक्ति का ह्रास हुए बिना, शक्ति का ह्रास हुए बिना निष्कलम। तो कला का मतलब है शक्ति, और निष्कलम माने शक्ति का ह्रास नहीं होता है, पूरे संसार का पालन करते हैं उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता है, सबको धारण करते हैं लेकिन उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, निष्कलम है ना। और अनुवाद में क्या लिखा है, खैर और देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि कहां पर अनुवाद में ये शब्द आया है निष्कलम। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते, वो विचार करना पड़ेगा। अच्छा आगे क्या है निष्कलम के बाद, क्या है अप्रतर्क्यम, अप्रतर्क्यम। अप्रतर्क्यम का मतलब क्या है, आ का मतलब नहीं और प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण, तर्क्यम माने तर्क के द्वारा, तो तर्कों की सीमा से परे अचिंत्य है, तर्क से आप नहीं समझ सकते उनको, अप्रतर्क्यम है ना। और इसमें क्या लिखा है, मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता, अप्रतर्क्यम का मतलब यह है, आप अचिंत्य हैं, अचिंत्य शब्द ये आया है अप्रतर्क्यम। इसके बाद क्या है मनोग्रयानम, मन अग्रयानम, शब्दार्थ में लिखा है मन से विधिक वेगवान, अग्र यान, यान समझते, यान चलता है ना, वायु यान, जल यान, तो यान कोई मशीन हो जो चलने वाली हो तो उसको यान बोलते हैं, जल यान जल में जो चलती है मशीन, वायु यान हवा में चलती है, तो मनो अग्र यान मन से आगे चलने वाले, आप जो है मन से आगे चलने वाले हैं, मन से भी अधिक वेगवान है मनोग्रयानम है ना। और इसमें लिखा है मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता मनोग्रयानम। इसके बाद क्या है वचसा निरुक्तम, वचसा अनिरुक्तम, जब शब्द तोड़ते हैं वचसा अनिरुक्तम, शब्द जाल से अवर्णनीय, शब्दार्थ में लिखा शब्द जाल से अवर्णनीय, शब्दों के जाल से आप उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं, कितना भी शब्दों का जाल बनाएं उससे जो है आप वर्णन नहीं कर सकते हैं, आपको सुनना पड़ेगा परंपरा के द्वारा, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, तो परंपरा जो कृष्ण से आ रही है परंपरा ज्ञान की परंपरा, उससे आपको सुनना पड़ेगा, वैसे आप शब्दों के जाल से वर्णन नहीं कर सकते हैं। वचसा अनिरुक्तम, इसमें क्या लिखा है अनुवाद में, शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं शब्द। इसके बाद कितने हो गए, नौ हो गए, बच्चा नौ हो गए। दसवां क्या है देवबरम, देवबरम का इसमें शब्दार्थ दिया है उन परमेश्वर को जिनकी ना तो कोई तुलना कर सकता है ना उनसे बढ़कर है, देवबरम, वर का मतलब श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, न तो उनके समान और ना कोई उनसे बढ़कर है ना। और अनुवाद में क्या लिखा है अतएव आप हर एक के आराध्य हैं, नहीं वो तो वरेण्यम आ जाएगा, आप सबके परम स्वामी हैं, देववरम का मतलब सबके परम स्वामी, अगर देवताओं के भी है? आप देवता हैं तो सबके, तो फिर किसके देवता नहीं, जिस सबके स्वामी हैं देववरम। इसके बाद वरेण्यम, वरेण्यम कितना नंबर हो गया, कितनी संख्या है 11, तो 11 जो है शब्दों से ब्रह्मा जी ने संबोधित किया है भगवान को, और 11 शब्दों से भगवान को नमस्कार किया है नमामहे है ना। तो इसमें अर्थ इस तरह से होता है कि 11 बार ब्रह्मा जी ने नमस्कार किया है भगवान को 11 नामों से, 11 नामों से नमस्कार किया है। वरेण्यम, वरेण्यम का मतलब परम पूज्य जिनकी पूजा गायत्री मंत्र द्वारा की जाती है। और इसमें लिखा है अतएव आप हर एक के आराध्य हैं ना, किस तरह से 11 जो है नामों से ब्रह्मा जी ने भगवान को नमस्कार किया है। और ये ब्रह्मा जी का पहला श्लोक, ब्रह्मा जी ने बहुत से श्लोक बोले हैं प्रार्थना के, श्रीमद् भागवत में प्रार्थना के श्लोक एक तिहाई है। ये जो जानने वाले हैं वो बताते हैं, हमने तो नहीं गिना, लेकिन अगर देखें प्रार्थना प्रार्थना ही प्रार्थना है और लंबी लंबी प्रार्थना है। भीष्म देव ने प्रार्थना किया है श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में, जब शरीर छोड़ रहे हैं। कुंती महारानी ने प्रार्थना की जब कृष्ण जा रहे हैं द्वारका, है ना, कुंती महारानी की प्रार्थना, भीष्म देव की प्रार्थना, बहुत प्रार्थना है, बहुत प्रार्थना है। यहाँ ब्रह्मा जी की प्रार्थना है ना, तो कई जगह शिव जी प्रार्थना करते हैं, है ना, तो बहुत प्रार्थना है। अच्छा, अब हम सुनेंगे तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। जिला प्रभुपाद की, भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं। अब तात्पर्य में भी देखिए कि कौन से श्लोक कौन से नाम को समझा रहे हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहला क्या है नाम, अविक्रियम, अविकारी, है ना। तो यहां प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं है। भौतिक सृष्टि में क्या होता है, विकार होता है। भौतिक सृष्टि में जो भी वस्तु है उसमें विकार होता है, है? विकार का मतलब परिवर्तन। जैसे आपका शरीर, हमारा शरीर, इसमें कितने परिवर्तन होते हैं, 6 परिवर्तन होते हैं, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, 6 विनाश। तो रोक नहीं सकते आप, आपने जन्म को नहीं रोका शरीर, है ना, वृद्धि को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आजकल जो है मेडिकल विभाग में मृत्यु को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जन्म को नहीं रोक सकते, वृद्धि को नहीं रोक सकते, प्रजनन को नहीं रोक सकते, मृत्यु को कैसे रोक सकते हैं, 6 परिवर्तन है, 6 परिवर्तन में किसी को भी आप रोक नहीं सकते, तो मृत्यु को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। या 6 यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वृद्धावस्था रोक नहीं सकते। जब 6 विकारों में आप एक को भी नहीं रोक सकते, पहले के किसी विकार को नहीं रोक सकते, तो 5वें और 6वें विकार को कैसे रोक सकते हैं, बुढ़ापा और मृत्यु को। लेकिन कृष्ण कहते हैं जरा मरण मोक्षा है, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए माम आश्रित यतन्ति, मेरा आश्रय लेकर के प्रयास करते हैं, तो वो छूटते हैं, तो फिर दोबारा शरीर ही नहीं प्राप्त कर रहे जिसमें 6 विकार होते हैं। तो अगर आपको छूटना तो 6 के 6 विकारों से छूटो, और नहीं तो एक भी विकार से नहीं छूट पाओगे। कि नहीं नहीं ये पहला परिवर्तन ठीक है चलता है, दूसरा परिवर्तन ठीक है चलता है, तीसरा परिवर्तन ठीक है चलता है, प्रजनन चलता है, यानी 6 नहीं होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी है। अगर चलेंगे तो 6 के 6 चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो 6 नहीं चलेंगे। तो आपको छूटना है तो 6 के 6 विकारों से छूटिए, कृष्ण की आराधना करिए। तो कृष्ण कहते हैं कि जो बुढ़ापा और मृत्यु से छूटना चाहते हैं है? तो मेरा आश्रय लेकर के प्रयास करें, है ना, तो जो है छूट जाएंगे, है ना, तो आप जो है छूट जाएंगे, तो 6 के 6 से छूटेंगे। तो ये नहीं, भगवान के धाम में ये नहीं होता है कि जन्म होगा वृद्धि होगी, नहीं, वहां पर आपको दिव्य शरीर प्राप्त होगा है? तो वो पैदा नहीं होता है, पैदा नहीं होता है, वो आपको बना बनाए पूरा प्राप्त हो जाता है। जो भी शरीर हो, बच्चे का शरीर हो या युवक का शरीर हो या वृद्धावस्था का शरीर हो, वो बना बनाया आपको मिल जाएगा, जन्म नहीं होता उसमें, वृद्धि भी नहीं होती कि फिर शरीर वृद्ध होगा, कि किसी को बूढ़ा शरीर मिला है तो आगे नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। गोलोक धाम में बूढ़े नंद महाराज हैं वृद्धावस्था में, तो वृद्धावस्था में ही सनातन, वो नहीं है कि मतलब फिर आगे कुछ और परिवर्तन होगा। वृद्धावस्था का भी सुख है, बचपन की अवस्था में किसी को शरीर मिलता है तो बचपन की अवस्था ही हमेशा रहती है, किसी को जो है जवान शरीर मिलता है तो जवान शरीर ही हमेशा रहता है। तो जन्म में वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, 6 विनाश कुछ नहीं है, चाहे जवान शरीर प्राप्त होता है, चाहे बच्चे का शरीर प्राप्त होता है, चाहे बूढ़ा शरीर प्राप्त होता है, कुछ नहीं है, 6 परिवर्तनों में से कोई भी परिवर्तन नहीं है, है ना। और भगवान का भी ऐसे ही है, गोलोक धाम में एक गोकुल स्थान है, तो भगवान जो है शिशु अवस्था में लीला करते हैं, तो हमेशा उसी अवस्था उनकी लीलाएं चलती हैं। मथुरा है, द्वारका है, अलग अलग अवस्थाओं में, तो भगवान की नित्य लीलाएं उसी अवस्था में चलती हैं। तो भगवान प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं है जिसमें विकार होगा, अविक्रियम, कोई विकार नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक भौतिक वस्तु एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। प्रत्येक भौतिक वस्तु, जैसे हमने शरीर का उदाहरण दिया, तो शरीर क्या है, भौतिक है, तो बदलता है, निश्चित बदलता है, आप रोक नहीं सकते। नहीं प्रभु जी 10 साल के बाद मैं आऊंगा तो आपको वैसे चेहरा होना चाहिए, क्या आप कर सकते हो यही चेहरा बना रहे 10 साल के बाद, शरीर वही, बिल्कुल आपको वही शरीर होना चाहिए 10 साल के बाद, नहीं, क्योंकि विकारी है शरीर, विकारी है, इसमें विकार आएगा, परिवर्तन आएगा। एक 10 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, नहीं 10 साल के बाद मैं चाहता हूं ये इसी अवस्था में रहे, नहीं हो सकता। तो चूंकि भौतिक शरीर है, प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक भौतिक वस्तु एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। उदाहरणार्थ मिट्टी से पहले मिट्टी का पात्र बनता है, पहले मिट्टी है, फिर मिट्टी का पात्र बन गया, और मिट्टी के पात्र से पुनः मिट्टी बनती है। मिट्टी का पात्र है, आप जो है इस्तेमाल करते करते एक दिन टूट जाता है, टूटेगा ही, और टूटेगा तो अंत में क्या हो जाएगा, मिट्टी, फिर मिट्टी बन जाएगा, है ना। हमारी सारी सृष्टियां क्षणिक एवं अस्थाई हैं, क्या है, हर चीज विकारी है, लेकिन कृष्ण है अविक्रिय, अविकारी, है ना। आगे, किंतु भगवान शाश्वत हैं, इसी प्रकार जीव जो भगवान के अंश हैं भी शाश्वत हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं, हम भी, हमें भी विकार नहीं है, जीवात्मा में विकार नहीं है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, सनातन जीव भी सनातन, तो अंश है तो भी सनातन। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे बीज है तो बीज आगे चलकर के वृक्ष का रूप धारण करता है, उसी प्रकार से जीव भी जो है भगवान का अंश है, उसमें भी संभावना है कि वो भगवान बन जाएगा। वो बीज का उदाहरण देते हैं कि जैसे बीज होता है तो बहुत छोटा सा रूप होता है, आगे चलकर विशाल वृक्ष रूप धारण कर लेता है, उसमें जीव भी भगवान का अंश है, उसमें भी पूरी संभावना है भगवान बनने की। लेकिन भौतिक है, एक बीज तो भौतिक वस्तु है, उसमें तो परिवर्तन होगा ही, 6 प्रकार के परिवर्तन है, और हो सकता है कि पहला परिवर्तन ना हो, दूसरा परिवर्तन ना हो, सीधे अंतिम परिवर्तन हो, अंतिम परिवर्तन निश्चित है विनाश, वो तो निश्चित ही है, लेकिन जीव में तो नहीं है। तो जीव भगवान का अंश है, और अगर अंश है तो वो अंश ही रहेगा, शाश्वत है, ये नहीं एक होगा। जैसे पानी की बूंद है, वो कहते हैं पानी की बूंद जो है समुद्र मिल गई तो समुद्र बन गई, समुद्र बन गई, है ना। तो इसी प्रकार से जीव भगवान में मिल करके भगवान बन जाएगा, है ना, गलत है, क्योंकि पानी की बूंद है तो ये इसमें भी क्या है, विकार है, इसमें भी परिवर्तन है, ना। जीव जो है, जीव में कोई परिवर्तन नहीं है, तो जीव भगवान में मिल नहीं सकता है कि एक हो जाए भगवान के साथ, ये नहीं हो सकता, अविकारी। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवान शाश्वत, भगवान सनातन या शाश्वत हैं, और जीव भी सनातन है। अंतर इतना ही है कि कृष्ण अर्थात भगवान परम सनातन है, और जीव सूक्ष्म अंश रूप सनातन, मतलब अंश है सनातन, अंश है भगवान जो है पूर्ण सनातन है, और जीव अंश सनातन, मतलब सनातन अंश है भगवान का, सनातन अंश है, कोई संभावना नहीं है भगवान बनने की। इस जद अच्छा है कि सेवक बने, सेवक के द्वारा भगवान को प्रसन्न करें, इस चक्कर में नहीं पड़ना कि आगे चल के मैं भी भगवान बन जाऊंगा और सेवा नहीं करनी पड़ेगी मुझे, भगवान बन जाऊंगा। जब हर हालत में सेवा ही करनी है, या तो माया की सेवा करो या भगवान की सेवा करो, और माया की सेवा करोगे तो लाते ही लाते खाओगे, और भगवान की सेवा करोगे तो प्रेम आनंद सुख सम्मान यश सब कुछ मिलेगा, कि भगवान सम्मान देते हैं, भगवान सेवा देते हैं, भगवान जो है अपनी सेवा के बदले में भगवान सेवा देते हैं, और भगवान ठुकरा, आप भगवान को ठुकराते हैं तो भगवान आपको ठुकराते हैं, बहुत चोट लगेगी, बहुत चोट लगेगी, भगवान नहीं बनोगे, चोट खाओगे, माया की, माया की सेवा करनी पड़ेगी हर हालत में। तो आप सनातन सेवक हैं, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, अगर आप सनातन दास हैं भगवान के और आप वो कार्य छोड़ देते हैं तो माया के दास बनते हैं और आप बहुत बहुत यातनाएं, बहुत यातनाएं मिलेंगी भोगने के लिए, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव सूक्ष्म अंश रूप सनातन है, जैसा कि भगवत गीता 13:3 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। तो ये जो है अभी तक जो प्रभुपाद समझा रहे थे वो पहले शब्द को समझा रहे थे अविक्रियम, और अविक्रियम में प्रभुपाद ने भगवान की बात समझाई और साथ साथ जीवात्मा की भी बात समझाई कि जीवात्मा भी अविक्रियम है, अभिकारी। तो अभिकारी का मतलब यह है कि जीव में कोई संभावना नहीं है भगवान बनने की, भगवान पूर्ण है और जीव अंश है, तो जीव जो है आंशिक रूप से सनातन है, पूर्ण नहीं बन सकता। जीव की पूर्णता ऐसी में है कि वह भगवान की सेवा करे। अब दूसरा जो शब्द है वो क्या है बताइए, अभिक्रियम के बाद सत्यम, है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, सत्यम, सत्यम, सत्यम को छोड़ करके फिर अनंतम, तीसरा शब्द अनंतम। तो प्रभुपाद आत्मन क्या लिखते हैं, अनंतम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जैसा कि भगवद्गीता 13:3 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। यदि भगवान एक व्यक्ति हैं और सारे व्यस्त जीव भी व्यक्ति हैं, किंतु भगवान जीवों से भिन्न होने के कारण विभू सर्वव्यापी तथा अनंत हैं, अनंत है। तो भगवान अनंत किस प्रकार से अनंत हैं, यानी अनंत प्रकार से अपने को प्रकट करते हैं, कैसे, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है, कि प्रत्येक क्षेत्र में यानी शरीर में, प्रत्येक शरीर में भगवान अपने को प्रकट करते हैं अलग अलग, जैसे भगवान अनंत हैं, अनंत संख्या, यहां अनंत का मतलब संख्या, भगवान एक हैं लेकिन अपने को अनंत रूपों में प्रकट करते हैं। तो प्रत्येक जीव में भगवान परमात्मा के रूप में अपने को प्रकट करते हैं, जैसे अलग एक अलग व्यक्ति है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम्, वो विभक्त नहीं है, ये विभक्त जैसे स्थित हैं सब जीव के साथ एक एक परमात्मा के रूप में, प्रत्येक जीव के साथ एक परमात्मा के रूप में वो विभक्त जैसे स्थित हैं, लेकिन विभक्त नहीं है, एक है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं यद्यपि भगवान एक व्यक्ति हैं और सारी व्यस्त जीव भी व्यक्ति हैं, जीव अलग अलग व्यक्ति हैं और भगवान एक व्यक्ति हैं, किंतु भगवान जीवों से भिन्न होने के कारण विभू तथा अनंत हैं, सर्वव्यापी और अनंत हैं। यह सर्वव्यापी और अनंत जो प्रभुपाद शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो इस तरह का सर्वव्यापी शब्द नहीं कि जैसे आकाश है निराकार सर्वव्यापी है, अनंत आकाश है, या वायु अनंत है सर्वव्यापी है, तो फिर तो निराकार हो गया। यहां पर प्रभुपाद जो है निराकार के भाव में सर्वव्यापी अनंत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो किस भाव में कर रहे हैं प्रभुपाद, कि प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा, वो कैसे परमात्मा है, हृदय के कमल में स्थित है, हृदय में कमल है, अष्टदल का कमल है, उसमें अंगुष्ठ मात्रम अंगूठे के पोर के बराबर परमात्मा है, और जिसका जितना बड़ा अंगूठा का पोर है उतना परमात्मा का साइज है, छोटे शरीर का अंगूठा भी छोटा होता है, चींटी का अंगूठा छोटा होता है, तो हृदय में उतने बड़े हैं परमात्मा, तो आकार है उनका, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है जीव के साथ उपस्थित हैं। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, और तीन कार्य उनके द्वारा ही होते हैं। स्मृति कभी आपको याद आता, कभी आपको याद नहीं आता, और आपके हाथ में याददाश्त नहीं है, आप कितना याद करें नहीं याद आता है, और अचानक याद आ जाता है। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, तो भुलाते भी हैं, तो आप भूलना चाहें तो भूलते नहीं हैं, भगवान भुलाते हैं तो आप भूल जाते हैं, और आप याद करना चाहते हैं तो याद नहीं होता है, और भगवान याद दिलाते हैं तो आपको याद आता है। आप प्रयास कर सकते हैं याद करने का, लेकिन आपके प्रयास से नहीं होता, भगवान जब तक सहायता ना करें तब तक आप जो है कितना याद करें आपको याद नहीं आएगा। ठीक उसी समय अगर भगवान भुला दें आप कितना याद करें आपको याद नहीं आएगा, है ना। मत्ता तो वो हृदय में परमात्मा है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु भगवान जीवों से भिन्न होने के कारण विभु यानी सर्वव्यापी और अनंत हैं। विभु का मतलब सर्वव्यापी, लेकिन वो निराकार आकाश की तरह नहीं है, सर्वव्यापी। वो सर्वव्यापी हैं कैसे, प्रत्येक हृदय में या प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक परमाणु के अंदर भी जो है, जो नाभिक न्यूक्लियस उसके अंदर परमात्मा है, इतने छोटे प्रत्येक परमाणु के अंदर है। तो सर्वव्यापी हैं लेकिन निराकार नहीं है, साकार है, अनंत है। अनंत मतलब संख्या में अनंत है, कितने परमाणु हैं, भगवान हर वस्तु के कारण स्वरूप हैं। आत्म का मतलब हर वस्तु के कारण स्वरूप हैं। आगे जीव असंख्य हैं किंतु भगवान एक हैं, ना तो कोई उनसे बड़ा है ना ही उनके तुल्य है। कौन सा शब्द है इसमें, देवरम, देवरम, देवरम दसवां शब्द है। ना तो कोई उनसे बड़ा है ना कोई उनके तुल्य है। इस तरह जैसा कि वैदिक मंत्रों से पता चलता है भगवान परम पूज्य हैं, परम पूज्य हैं। इसमें क्या है, परम पूज्य वरेण्यम, भगवान परम पूज्य हैं। ना तत् समस्त उनके समान कोई नहीं, ना उनसे बढ़कर कोई है। भगवान परम है कोई कोई व्यक्ति कल्पना या वाकजाल से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता। कल्पना से मनोज्ञानम, मनोज्ञानम माने दोनों अर्थ है, एक अर्थ मनोज्ञानम माने मन आपका जितना तेज जाता है उससे तेज चल सकते हैं भगवान, और दूसरा मनोग्रियानम का मतलब यह है कि आप मन से कितनी भी कल्पना करें आप उनको नहीं समझ सकते, तो मन की कल्पना से परे हैं। भगवान के बारे में आप सुन करके बहुत आसानी से जान सकते हैं कि भगवान कौन है कैसे हैं, भक्ति के द्वारा। अपनी कल्पना से आप कितना भी प्रयास करें आपको पता नहीं चलेगा। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि कोई व्यक्ति कल्पना या वाक जाल से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता, तो कल्पना से भगवान के महिमा आप नहीं जान सकते हैं। इसके लिए शब्द कौन सा है, मनोज्ञानम, ठीक है। और वाक जाल से उनका कोई मूल्यांकन यानी उनका महत्व नहीं जान सकता, क्या शब्द है, वचसानुरूक्तम, वाक जाल से। वाणी का कितना भी जाल आप बनाए, है ना, जब तक आपने सुना नहीं, और जो सुना है उसको दोहराना है केवल, तो हम वाणी का जाल नहीं बनाते। प्रभुपाद ने वाणी का जाल नहीं बनाया, प्रभुपाद ने क्या है, जो परंपरा के द्वारा जो ज्ञान है उसको दोहराया है। तो इसलिए हम लोग दोहराते हैं जो भी संदेश है, शब्द शब्द जो है अपने शब्दों में हम दोहराते हैं, शब्द तो बताते हैं लेकिन जो संदेश है वो नहीं बदलता। तो उसको हम दोहराते हैं, तो इसको कहते हैं। तो वाणी के जाल के द्वारा, वाक जाल से उनका महत्व कोई नहीं जान सकता। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, भगवान मन से भी वेग से घूम सकते हैं, ये भी मनोग्रियानम का दूसरा अर्थ, ये भी मन से अधिक घूम सकते हैं। घूम सकते हैं मतलब चल सकते हैं। ईशो निषद के स्तुति मंत्रों में कहा गया है, अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्व मरसत तद्धावतो न्यान अत्यधि तिष्ठत तस्मिन नपो मातर स्वदधाती। ये तभी भगवान अपने धाम में स्थिर हैं। क्या अपने धाम में स्थिर हैं? भगवान अपने धाम में स्थिर हैं, किंतु वे मन से विधिक वेगवान हैं और दौड़ने में अन्य सबको पछाड़ सकते हैं। रेस, रेस में हमेशा उनको ही प्राइज मिलेगी, प्राइज विनर। रेस में सबको पछाड़ सकते हैं, दौड़ने में अन्य सबको पछाड़ सकते हैं, शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक ही स्थान में रहते हुए वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वालों को नियंत्रित करते हैं। एक ही स्थान में रहते हुए वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करते हैं, क्षमा करिए, वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वालों को नियंत्रित करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। ये उपनिषद का चौथा मंत्र, उपनिषद के भी जो श्लोक है उनको हम मंत्र बोलते हैं, चौथा मंत्र। अतः इस प्रकार ब्रह्म की तुलना कभी भी अधीनस्थ जीवों से नहीं की जानी चाहिए। मतलब स्थिर रहने में भी भगवान सबसे ज्यादा स्थिर है। स्थिर रहकर के भी, एक स्थान रहकर के भी कितना वो काम कर सकते हैं, उनको चलने की जरूरत नहीं बिल्कुल। एक स्थान में स्थिर होकर के भी वे जो है सब पर नियंत्रण कर सकते हैं। प्रभुपाद को तो जो है यात्राएं करनी पड़ती थी ना, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, लेकिन भगवान के पास ऐसी शक्ति है कि उनको जो है कहीं इधर से उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक स्थान में रह करके भी उनका पूरा नियंत्रण हो सकता है, सब जगह नियंत्रण कर सकते हैं। और फिर भी अगर चलना चाहें तो चलने में उनसे तेज कोई नहीं हो सकता। तो स्थिर रहने वालों में भी भगवान सबसे आगे हैं, सब काम एक स्थान में रहते हुए कर सकते हैं, और दौड़ने वालों में भी भगवान सबसे आगे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्म की तुलना कभी भी अधीनस्थ जीवों से नहीं की जानी चाहिए। ये कौन सा शब्द है इसमें कि ब्रह्म की तुलना अधीनस्थ जीवों से नहीं की जानी चाहिए? क्या जी? देववरम, देववरम, बिल्कुल सही। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, किंतु दुष्ट जीव ऐसा नहीं है। दुष्ट जीव तो अपने शरीर के हृदय में ही है। आप अपने शरीर के हृदय में स्थित हैं, लेकिन भगवान सबके हृदय में स्थित हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु दुष्ट जीव ऐसा नहीं है, अतः जीव की तुलना परमेश्वर से नहीं करनी चाहिए। भगवदगीता 15:15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि हर व्यक्ति भगवान के तुल्य है। इसका गलत अर्थ भी निकालते हैं लोग। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूं, तो लोग क्या सोचते हैं कि सभी जीव भगवान हैं। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूं, तो वे समझ नहीं पाते हैं कि भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, लेकिन जीव अपने अपने हृदय में स्थित है, वो अलग है। तो दो आत्माएं हैं प्रत्येक शरीर में, है ना? तो परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर भगवान कहते हैं भाई सबके हृदय में स्थित हूं तो सभी भगवान हैं, तो वो नहीं समझ रहे। क्या नहीं समझ रहे? कि प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं, जीवात्मा बंधा हुआ है, तीन गुणों से बंधा हुआ है, शरीर से बंधा हुआ है, दुखों से बंधा हुआ है, मृत्यु से बंधा हुआ है, और भगवान किसी से बंधे नहीं है, ना उनको दुख है, ना उनको मृत्यु है, ना उनको जो है तीन गुणों का बंधन, वो शरीर से बंधे नहीं है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि हर व्यक्ति भगवान के तुल्य है, तृतीय मंत्रों में ये भी कहा गया है, है? ये बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने जो है तर्क दिया है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हर व्यक्ति भगवान की तुल्य है। क्या वो मान लें कि भाई हृदय में दो आत्माएं हैं, जीवात्मा है परमात्मा है, एक ही हृदय में है तो बराबर है। जैसे कहते भाई जिस घर में तुम रहते हो उसी घर में मैं भी रहता हूं, तो क्या अंतर है? अपने को तुम बड़ा कैसे समझते हो? कोई कहता है जिस गांव में तुम रहते हो उसी गांव में मैं रहता हूं, फिर क्या अंतर है? तुम कहां से बड़े लंबरदार हो गए? बोलते हैं जैसे वो कहते हैं उसी हृदय में मैं भी हूं और भगवान भी है, तो भगवान कहां के लंबरदार हो गए? मैं भी तो बराबर हूं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये इस तरह का तर्क नहीं चलता। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हर व्यक्ति भगवान के तुल्य है। जैसे जेल के अंदर जो कैदी है, है तो प्राइम मिनिस्टर आया कभी जेल को देखने के लिए, तो कैदी सोचते हैं देखो ये भी जेल के अंदर आए, मैं भी जेल, बराबर है, क्या अंतर है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि हृदय में भगवान, सबके जीव, सब जीवों के हृदय में भगवान है। या फिर कुछ मूर्ख लोग तर्क करते हैं कि भगवान को हृदय में आने की जरूरत ही नहीं है, इतनी गंदी जगह में जीवात्मा बंधा हुआ है, है तो भगवान क्यों आएंगे? भगवान को आने की जरूरत नहीं है, भगवान तो अपने धाम में, भगवान अपने धाम में है, लेकिन परमात्मा रूप में उन्होंने अपना विस्तार किया है और प्रत्येक जीव के हृदय में है। और कितना भी गंदा आपका हृदय है, लेकिन भगवान का नाम ना चाहें तो क्या रोक सकते हैं? और भगवान अपने को छिपा करके रखते हैं वहां, तो आप नहीं रोक सकते भगवान को। कहीं भी भगवान जाना चाहें तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, है ना? और वो अगर आ जाएं तो उनकी स्थिति में कोई कमी नहीं आती, उनकी महिमा में कोई कमी नहीं आती, है? क्या वो हृदय में आ गए आपके तो अब उनकी महिमा घट गई? ऐसा नहीं है, भगवान की महिमा नहीं घटती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया हृदय हृदय ही अयम आत्मा प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता यानी प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठा उनकी प्रतिष्ठा है। आप जीव के, आप जीवात्मा हैं, हृदय के अंदर कैद हैं, भगवान प्रतिष्ठित हैं। आगे श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है सत्यम परम धीमहि, वेद मंत्र कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम। तो इसमें भी वेद मंत्र में भी सत्यम और अनंतम शब्द जो कि इस श्लोक में है, और निष्कलम ये शब्द वेद मंत्र में है, इस श्लोक में है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते फिर भी वे ही सब कुछ करते हैं, जैसा कि भगवत गीता 9:4 में भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेजो वर्षिता। ये सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सारे प्राणी मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, वे स्वयं कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ करते हैं। अब उसको समझा रहे हैं कि वे कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ करते हैं, कैसे? कि अव्यक्त रूप से वो व्याप्त है सब जगह, सब प्राणी उनमें है, यानी सबको धारण किए हैं, वे उनमें नहीं है, यानी उनका भार उनके ऊपर नहीं आ रहा है, फिर भी सबको धारण किए हुए हैं लेकिन किसी चीज का भार उनके ऊपर नहीं आ रहा है, ना? आगे मयाध्यक्षेण प्रकृति सुहित ये सचराचरम हेतु नाने कौंदे जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। कैसे? अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष मतलब सुपरिंटेंडेंट, तो उसके सुपरविजन में सब काम होता है, तो वो कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ तो वही कर रहा है, उसके सुपरविजन में काम हो रहा है। तो से भगवान कुछ नहीं करते और सब कुछ वही करते हैं, ये बात समझ सकते हैं ना? तो प्रभु मैं अध्यक्ष हैं, तो मेरे सुपरविजन में, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सुते सचरातरम, प्रकृति सब जीव चर अचर सब जीवों को उत्पन्न करती है, और भी परिवर्तित 6 प्रकार के परिवर्तन भी प्रकृति देती है भगवान की अध्यक्षता में, है ना? अपने नियम के अनुसार ये सृष्टि बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है। तो भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, तो सब कार्य भगवान का ही है, ना? तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भगवान सर्वश्रेष्ठ कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, सब काम उनके द्वारा ही होता है, तो वही सर्वश्रेष्ठ होता है ना, कि नहीं? हजारों मजदूर काम करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होते कि भाई कितना मेहनत कर रहे हैं, मजदूर कहे मैं देखो दिन रात मेहनत करता हूं सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं, तो वह सबसे श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सुपरिंटेंडेंट श्रेष्ठ की वो कुछ नहीं करता और हजारों मजदूर काम कर रहे हैं तो उसका ही काम कर रहे वही कर रहा है। मजदूर इतना काम कर रहे तो भी कहते तुम कुछ नहीं कर रहे, वो कहता मैं इतनी मेहनत करता हूं तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब काम तो उनका है, तो सर्वश्रेष्ठ वही है। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके अपेक्ष में प्रकृति सब जीवों को उत्पन्न करती है और सृष्टि और प्रलय भी करती है। आगे भगवत गीता 9:10, इस तरह भगवान अपने धाम में मौन रहकर भी अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा सब कुछ करते रहते हैं, परास शक्ति विविध है वस्तु हुए थे। आगे ब्रह्मा द्वारा उच्चारित सारे वैदिक मंत्र या स्तुति मंत्र इस श्लोक में आए हैं, प्रभुपाद बता रहे इस श्लोक में देखो मंत्र है वैदिक मंत्र श्रुति मंत्र इस श्लोक में आए हैं। तो मंत्रों में सबका अधिकार नहीं है, उनका एक विशेष स्वर होता है विशेष क्रम होता है मंत्रों का, अगर आप उच्चारण करते हैं तो फिर उससे जो है परिणाम में बड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन इनमें अगर उच्चारण में कोई अशुद्धि भी हो जाए तो कुछ नुकसान नहीं है और फायदा ही फायदा है। और ये श्लोक ये भागवतम के श्लोक है, तो प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मा द्वारा उच्चारित सारे वैदिक मंत्र या श्रुति मंत्र इस श्लोक में आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके अनुयायी जो ब्रह्म संप्रदाय के हैं भगवान को परंपरा पद्धति से जानते हैं। हमें अपने पूर्वगामियों के वचनों से ज्ञान प्राप्त करना होता है, कुल 12 महाजन हैं जिनमें से ब्रह्मा भी एक है। भागवत 6:3:20 का श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया, स्वयंभूर नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बल्लभ्यास कृवयम्। हम लोग ब्रह्म की परंपरा के हैं अतः ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि भगवान को जानने के लिए देवता ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हैं अतः हमें भी भगवान को समझने के लिए परंपरा पद्धति के महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने कितनी मतलब शिक्षा दे दी, पूरी शिक्षा दे दी, एक तात्पर्य में पूरी शिक्षा दे दी, कुछ छोड़ा नहीं है ना। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और समय हो चुका है, फिर भी एक या दो प्रश्न हम कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। प्रार्थना जो जो वैदिक मंत्र होते हैं तो उनका उच्चारण प्रभुपाद ने जैसे दिया है तो प्रभुपाद ने दिया है तो उस तरह से आप उच्चारण कर सकते हैं प्रार्थना के रूप में है? लेकिन जो श्रीमद् भागवत भगवद गीता ये आप नियमित रूप से इनको कर सकते हैं, इनका आप जो है नियम बना सकते हैं पाठ करने का, ठीक है ना। लेकिन जो वैदिक मंत्र होते हैं उनका वास्तव में उच्चारण होता है कुछ विशेष लय, जैसे मायापुर में जो गुरुकुल है तो वहां बच्चे जो है विशेष वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण है वो सीखते हैं, उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, मंत्रों का उच्चारण करने में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लेकिन जो गीता है भागवत है तो मैं किसी दूसरे स्वर में गा रहा हूं, आप दूसरे स्वर में गा सकते हैं, लेकिन फिर भी तरीका यही है कि अगर मैं जिस स्वर में गा रहा हूं तो आप लोग उसी स्वर में दोहराइए। कभी भी भक्त लोग अपने दूसरे स्वर में गाने लगते हैं, लेकिन शिष्टाचार यही है कि जब मैं अगर एक विशेष स्वर में गा रहा हूं तो आप उसी स्वर में दोहराइए, ठीक है ना। ठीक
है, तीन प्रश्न छोटे छोटे,
तीन
छोटे छोटे। पहला मुझे ये है, जैसे आपने बताया कि भगवान जो है मतलब हम मत्स्य गति का नाम भगवान चलो वाला जो श्लोक है कि जब भगवान चाहते तब याद आता है, जब नहीं याद नहीं चाहते तब याद नहीं आता, तो इसका सहारा लेके जो है मतलब आप मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं होते हैं, बोले सारे आलसी हो जाएंगे, बोलेंगे अब याद नहीं आया पेपर में, और जो पास हो गए वो सब याद आएंगे, भगवान ने याद दिला दिया, मतलब काम चोरी बढ़ती है इससे, किस तरीके से उनको किस तरीके से चीज समझाएं।
इसको समझना है कि आप प्रयास करते हैं और भगवान उसका फल देते हैं, तो और प्रयास का फल भी मिलता है, आप अभ्यास करते हैं तो आपको याद भी आता है, लेकिन फिर भी भगवान के हाथ में चाबी है कि अगर ना आए अगर भगवान चाहें तो आपको भुला सकते हैं, तो वो भगवान के हाथ में है। लेकिन भगवान जो है ज्यादा से ज्यादा तो यही करते हैं कि आपने अभ्यास किया है तो आपको याद आता है, लेकिन भगवान के हाथ में नियंत्रण फिर भी है, भगवान के अंदर पूरा नियंत्रण है, इस बात को समझ लीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे सोचेंगे मुझे याद आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब पिछले जन्म की बात में किसी को याद आ जाती है ना, तो आप याद नहीं कर सकते। तो भगवान के हाथ में मतलब वो भी है कि याद आ जाए, कुछ भी याद आ सकता है आपको, ठीक है।
दूसरा मुझे ऐसे छोटा सा था, यही जो आपने सुपरिटेंडेंट का जो आपने उदाहरण दिया, तो काम कर रहे हैं सारे मजदूर काम कर रहे हैं और सुपरिटेंडेंट की मतलब कि वो ये कहा जाता है वो काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब ये है कि जिम्मेदारी उसकी है इसलिए इस तरीके से कि या काम भी वही कर रहे हैं इस तरीके से माना जाए।
जो मजदूर है वो काम कर रहा है उसको बंधन है, उसको भय है, अगर वो काम नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा, ठीक है ना। और भगवान स्वतंत्र हैं, उनका नियंत्रण अंतर यह है, ठीक है।
तीसरा आखिरी जो है जो ये श्लोक लेके शायद जो मेरे को समझ आया था, वो श्लोक और मंत्र में आपने कुछ एक वो भेद बताया था, मतलब क्या मतलब ये ऐसे कैसे देखते हैं कि जो श्लोक है मंत्र जो है वो श्लोकों से निकाले जाते हैं इस तरीके से है ऐसे
नहीं। मंत्र जो है जो वैदिक मंत्र हैं तो उनमें कुछ विशेष शक्ति होती है और कुछ मंत्रों का प्रयोग जो है हवन में किया जाता है और वो मंत्र का उच्चारण करके जो हवन करते हैं तो उससे विशेष परिणाम मिलता है, और अगर उस मंत्र में कोई गलती हो गई उल्टा परिणाम भी हो सकता है। जैसे इंद्र शत्रो विवर धस्व, उसी को ही जो है थोड़ा सा अंतर हो गया, तो इंद्र शत्रो का मतलब है इंद्र जिसका शत्रु है, तो इंद्र जिसका शत्रु हो है? तो ये इंद्र के हाथों जो मारा जाए, ये इंद्र शत्रु का दूसरा अर्थ ये हो गया कि जो इंद्र का शत्रु है, तो इंद्र का शत्रु वो त्वष्टा ने जो है मंत्र पढ़ा था कि इंद्र का शत्रु मतलब पैदा हो जो इंद्र को मारे, लेकिन थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो गई तो एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा जाए, तो बिल्कुल उल्टा परिणाम हुआ। तो इस तरह से परिणाम जो है उल्टे हो जाते हैं मंत्र के जो है उच्चारण में, हो गया। अच्छा आखिरी प्रश्न है ये,
भगवान अगर अविक्रियम है विक्रियम है मतलब अविकारी है, किंतु हम देखते हैं भगवान की बाल लीलाओं में कि भगवान का वृंदावन में रूप बदलता रहता है, तो अगर
इनका अच्छा प्रश्न है,
नंद महाराज का रूप नहीं बदलता है लेकिन
भगवान का जो है जो शरीर बदल रहा है तो ये भौतिक प्रकृति के जो है विकार के कारण नहीं हो रहा है, उनकी इच्छा के अनुसार बदल रहा है, उनकी इच्छा के अनुसार। और जब उनकी अवस्था हो जाती है 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, उसके बाद उनका शरीर नहीं बदलता, कोई कर सकता है ऐसा कि 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के बाद आपका शरीर वैसे ही रहेगा? नव यौवनम, और नव यौवन की अवस्था है, फिर उसके आगे उनकी अवस्था नहीं बदलती। 125 साल तक रहे भगवान, उसके बाद नहीं। तो इस सब उनकी इच्छा के अनुसार जो है भगवान इच्छामय, इसलिए भगवान को इच्छामय, तो ये सब इच्छा है, आनंद लेने के लिए और आनंद देने के लिए उनका शरीर बदलता है और कुछ भी अपना शरीर को धारण कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधिका रमण की जय, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गौर नताई की जय, हरे कृष्ण।